पृष्ठ संख्या 112। डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम नेताओं को दबाने, किनारे करने वाली इस योजना को घृणित कहा है। वे कोई मुस्लिम समर्थक नहीं थे। उन्होंने तथ्यात्मक निष्पक्ष विश्लेषण में यह कहा कि मुसलमानों में यह भाव पैदा हुआ कि कांग्रेस उन्हें एक गुलाम प्रजा के रूप में रखना चाहती है। उनके अनुसार मुसलमान सदियों तक भारत में प्रभुत्व की स्थिति में रहे हैं। मराठा शक्ति के उदय के साथ भारत के कई हिस्सों में यह स्थिति बनी रही। वस्तुतः ब्रिटिश सत्ता ने ही मुसलमानों का काफी अहित किया। अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक न्यायिक कार्यकारी कानून बनाए, इससे मुसलमानों के पारस्परिक धार्मिक कानूनों पर संघातिक चोट पहुंची। अंग्रेजों ने धर्म पर आधारित मुस्लिम दंड कानून व विधि प्रक्रिया को समाप्त करने के साथ उनकी अदालतों को भी खत्म किया। उनके विकल्प रूप में अपनी अदालतें और कानून बनाए। अंग्रेजों ने ही शरीयत और मुसलमानों के निजी कानूनों को सीमाबद्ध करके पहले से मुस्लिम काजियों के फैसले करने की पद्धति को समाप्त किया। बिना किसी धार्मिक पक्षपात के अंग्रेजों ने जज और मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की। वे ही मुस्लिम कानूनों की व्याख्या करने और उनके अनुसार निर्णय देने लगे। मुसलमानों का शासक से शासित होने का यह दौर था। अब इस सीमा से अलग हटकर हिंदुओं के अधीन रहना उन्हें अपमानजनक लगता था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस शताब्दी के तीसरे दशक में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उस पर बृहद टीका टिप्पणी की है। उन्होंने मुसलमानों की जोर जबरदस्ती और हिंसा की राजनीति की निंदा की और शांतिपूर्ण समाधान का सुझाव दिया। वे समझते थे कि नैतिक मूल्यों के द्वारा ही शक्ति को सत्य में बदलने की पैरवी की। वे मुसलमानों की मांग के साथ सहानुभूति और पाकिस्तान निर्माण को अवश्यंभावी मानते हुए भी मुस्लिम लीग की गुंडा राजनीति को बुरी तरह से कोसते थे। वे बुद्धिवादी और धर्मनिरपेक्ष जिन्ना के समर्थक थे, किंतु उन्होंने जिन्ना के अबुद्धिवाद की भी कटु निंदा की। उनकी राय थी कि जब तक जिन्ना कट्टर नहीं थे, धर्मनिरपेक्षतावादी थे, उन्हें वह लोकप्रियता अपने समाज में नहीं थी। लेकिन जब से उन्होंने अपने को मुस्लिम राष्ट्रवाद का प्रतीक बना लिया, तभी से वे जन नेता बने। वह पाकिस्तान निर्माण को रोग की शल्य चिकित्सा मानते थे। उन्होंने इसमें किसी तरह की नैतिकता अनैतिकता नहीं देखी। वे कहते थे, अगर मुसलमानों के लिए पृथक पाकिस्तान जरूरी है, तो पंजाब और बंगाल के गैर मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान से अलग रखना भी जरूरी है, और इसके लिए गैर मुस्लिम क्षेत्रों को अलग किया जाए। इस काम के लिए इन राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के वे पक्षधर थे। इसीलिए 1946 में कैबिनेट मिशन ने जिन्ना के समक्ष शर्त रख दी कि या तो सीमित केंद्रीय सत्ता के पक्षधर स्वीकार करो या बटा हुआ पाकिस्तान। जिन्ना पहले तो सीमित केंद्रीय सत्ता के पक्षधर हो गए, अर्थात सुरक्षा, विदेश नीति, डाक, तार, रेलवे आदि विषय केंद्र के पास, शेष सभी विषय राज्यों के अधीन रहे और ऐसी स्वायत्त इकाई बनने पर वे पाकिस्तान की मांग को पीछे रखने को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने देखा, कांग्रेस ही त्रिस्तरीय योजना को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने अंबेडकर के सुझाव के अनुसार ऐसे पाकिस्तान को मान लिया जिसके अनुसार वहां सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्र ही शामिल होने वाले थे। एक पाकिस्तान आर पार्टीशन ऑफ इंडिया डैश डॉक्टर अंबेडकर कॉमा पृष्ठ संख्या 32, दो वही कॉमा पृष्ठ संख्या 377। पृष्ठ संख्या 113। अंबेडकर ने मुसलमानों को सुझाव दिया कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के संबंध में उन्हें अपने विचार, विवेक और सिद्धांत पर खड़ा करना चाहिए। स्वनिर्णय का अधिकार तो जनता का होना चाहिए, यह राजा का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। उन्होंने लीग को इस संबंध में बेईमानी तथा सिद्धांतहीनता से बचने की अपील की। उन्होंने लीगी नेताओं से प्रश्न किया, आप कश्मीर पर दावा करते हैं क्योंकि वहाँ की बहुसंख्यक जनता मुसलमान है। आप हैदराबाद पर भी दावा करते हैं क्योंकि वहाँ का राजा मुसलमान है। इस दोगली नीति से बचिए। अंबेडकर की सलाह न मानने का नतीजा यह हुआ, कश्मीर और हैदराबाद दोनों पाकिस्तान के हाथ से चला गया। डॉक्टर अंबेडकर गांधी के देश आजाद होने के बाद बंटवारे के सुझाव को महत्वहीन मानते थे और उन्हें राजा जी की योजना स्वप्न लोक में विचरण जैसी लगती थी। राजा जी 1943 से 44 में ही सुझाव दिए थे कि एक अस्थायी सरकार लीग कांग्रेस की बने। अंबेडकर के अनुसार इस सरकार में दोनों पक्ष झगड़ते जिन्ना भावी आश्वासनों पर यकीन करने वालों में नहीं थे। अंबेडकर कहते हैं, पहले प्रभु सत्ता संपन्न अस्थायी सरकार बनाकर बंटवारे का काम उसको सुपुर्द करने की बात जिन्ना किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करते। संवैधानिक परिवर्तन का एकमात्र सत्ता है ब्रिटिश संसद ही अधिनियम बनाए जिसमें ब्रिटिश भारत के राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण घटकों द्वारा स्वीकृत प्रावधान शामिल किए जाएं। डॉक्टर अंबेडकर की यह बात बाद के घटनाक्रमों से उनको सही साबित करती है। वे भारत की आज़ादी के भी प्रबल पक्षधर थे, लेकिन इस काम में मुख्य समस्या सांप्रदायिक है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे साथ साथ एक भारत के प्रेम को भी नहीं छोड़े थे। उनके लिए भारत का बंटवारा मजबूरी है और हमारे इतिहास की विरासत का फल है, लेकिन भविष्य में एकता के सूत्र खो न जाए इसकी भी तैयारी रहे, इसके लिए वे भारत परिषद की व्यवस्था के पक्षधर थे। यह परिषद सर्वोपरि प्रभु सत्ता वाली संस्था ही नहीं, बल्कि दो प्रभु सत्ता सफल राज्यों की प्रतिनिधि संस्था थी। उन्होंने कहा, यह न तो संघ होगा न महासंघ, अपितु यह हिंदुस्तान पाकिस्तान को तब तक जोड़ने का काम करेगी जब तक वे एक संविधान के अंतर्गत एक नहीं हो जाते। उन्होंने आशा प्रकट की कि दोनों देश मिलकर शांतिपूर्ण और सद्भाव के साथ विभाजन स्वीकार करें और विभाजन के बाद दोनों मित्र देशों की तरह रहें, उनके बीच सद्भाव रहे, शत्रुता नहीं। उन्हें आशा थी कि दुर्बल पाकिस्तान देखकर मुसलमान स्वतः एकता के पक्ष में होंगे। वे अंतर मन से मानते थे कि विभाजन अस्थायी होगा, किंतु यह जोर जबरदस्ती से पुनः एक नहीं होगा। उन्होंने संपूर्ण भारत के इतिहास की तथ्यपरक जांच करने के बाद भारत के रक्षा संबंधी प्रश्नों को उपस्थित किया। वे समझते थे कि बार बार मुस्लिम आक्रमणों के कारण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसे पाकिस्तान में शामिल किया जाना था, उस क्षेत्र की संस्कृति और स्वरूप में इतना बदलाव आ गया है कि उस क्षेत्र का श्रेष्ठ भारत के साथ एकता का कोई सवाल नहीं, अपितु वास्तविक विरोध है। एक पाकिस्तान आर पार्टीशन ऑफ इंडिया डैश डॉक्टर अंबेडकर कॉमा पृष्ठ संख्या 370, दो वही कॉमा पृष्ठ संख्या 410, तीन वही कॉमा पृष्ठ संख्या 393। पृष्ठ संख्या 114। कमजोर केंद्र और कमजोर सेना के कारण भारत कमजोर बना रहेगा। उन्होंने कैबिनेट मिशन को जो ज्ञापन दिया था उसमें कहा था, मिशन को पहले पाकिस्तान का प्रश्न हल करना चाहिए। उन्हें किसी कीमत पर कमजोर केंद्र स्वीकार नहीं था, इसीलिए वे लीग की स्वायत्तता के सुझाव को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने भारत की रक्षा व्यवस्था के बारे में कहा था कि 1857 के विद्रोह से पहले जो बंगाल सेना थी उसमें मुख्य रूप से गंगा क्षेत्र की ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां थीं। विद्रोह के दिनों में यह सेना छिन्न भिन्न हुई और बची यूनिटों को तोड़ दिया गया। विद्रोह के बाद जानबूझकर अंग्रेज सरकार ने सेना का रूप बदला। अंग्रेजों ने मार्शल रेस की कल्पना की। मार्शल रेस और गैर मार्शल रेस का बंटवारा बनावटी है, वह मूर्खतापूर्ण है। यह हिंदुओं की जाति प्रथा की तरह योग्यता के सिद्धांत का तिरस्कार करता है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर पश्चिम के मुसलमानों के सेना में बढ़ते प्रभाव को देश के भविष्य के लिए खतरनाक मानते थे। वे विश्व इस्लामाबाद और मुस्लिम शक्तियों के भारत के विरुद्ध संगठित होने के प्रचार मात्र से भयभीत तो होते थे। यदि सेना सांप्रदायिक भावना से प्रेरित होगी तो यह देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। उत्तर पश्चिम की मुस्लिम सेना को विदेशी हमले से देश की एकमात्र रक्षक बनाने के वे खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम के मुसलमान अपनी विशेष सामरिक स्थिति के प्रति विशेष जागरूक हैं और अपने को भारत का द्वारपाल मानते हैं। हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हिंदू इन द्वारपालों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अगर हमलावर रूसी होंगे तो यह द्वारपाल द्वार की रक्षा बड़ी निष्ठा और मजबूती से करेंगे। लेकिन मान लो अफगानिस्तान अकेले ही या अन्य मुस्लिम देशों के साथ मिलकर हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है, तो क्या वे द्वार खोलकर उन्हें अंदर नहीं आने देंगे? हिंदुओं के सामने कठिन विकल्प है कि वे निरापद सेना को चुने या सुरक्षित सीमा को। मुसलमानों का बाहर रहकर विरोध करना भीतर रहकर विरोध करने की तुलना में बेहतर होगा। उन्होंने कहा, जिन्ना खिलाफत आंदोलन में इसीलिए शामिल नहीं हुए कि वे इस बात के विरुद्ध थे कि हिंदुस्तानी मुसलमान देश के बाहर के मुसलमानों के बारे में बिना मतलब क्यों उलझे। जिन्ना तो हिंदुस्तानी मुस्लिम राष्ट्र राज्य के पक्षधर थे। वे किसी भावी विश्व इस्लामी सल्तनत का एक प्रांत नहीं बनना चाहते थे। जब वे संयुक्त हिंदुस्तान के प्रबल समर्थक थे, तभी उन्हें खिलाफत आंदोलन से कोई सहानुभूति नहीं थी और वे गांधी की इस प्रश्न पर निंदा करते थे। जिन्ना ने कहा, क्या कोई एक क्षण के लिए मान सकता है कि अफगानिस्तान अपने ऊपर ईरान का शासन चलने देगा? क्या कोई मान सकता है कि अरेबियन जैसे छोटे उपमहाद्वीप में, जहां यमन, सऊदी अरब, इराक आदि राज्य हैं, कोई राज्य एक दूसरे के हक में अपनी प्रभुसत्ता छोड़ेगा? क्या ईरान तुर्की को अपने ऊपर राज्य करने देगा? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि जब उत्तर पश्चिम के इलाके में मुसलमानों का स्वाधीन राज्य बन जाएगा, तो किसी दूसरे को हम अपने ऊपर राज्य करने देंगे? क्योंकि हिंदुओं पर राज करने से पहले उन्हें हमारे ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। जिन्ना की उक्त धारणा के बावजूद कुछ पोंगापंथी मुसलमान नेता विश्व इस्लामाबाद की ढोल पीटते थे, और उनसे अधिक कुछ सांप्रदायिक हिंदू नेता इस बात का प्रचार करते थे कि सचमुच ऐसा इस्लामाबाद आ ही रहा है। एक, पाकिस्तान आर पार्टीशन ऑफ इंडिया - डॉक्टर अंबेडकर, कॉमा पृष्ठ संख्या 61 से 68।